कद लंबाई चौड़ाई में एक जैसे, मोटाई में एक जैसे, तुम्हारे और बाली के बीच में हे सुग्रीव लेश मात्र भी तो अंतर नहीं था। जैसे तुम वैसा का वैसा बाली, जैसा बाली वैसा का वैसा तू, तुम दोनों आपस में जब स्वर लगाते बोलते भी थे, ललकारते थे, तो उस ललकार में भी तुम्हारा स्वर एक जैसा निकलता था। मैंने यहां तक गहराई से देखा कि किसका हाथ किस पद्धति से उठता है, लेकिन दोनों का हाथ एक जैसे उठता है। माने जिस वेग से बाली हाथ उठाता था उसी वेग से तुम उठा लेते थे, जिस वेग से बाली तुम्हारा हाथ पकड़ तुमको घुमाता था तो उसी वेग से तुम बाली का हाथ पकड़ उसको घुमा लेते थे। तो विक्रमेण ऐसे घूमने में, चलने में, बोलने में तुम दोनों के कोई लेश मात्र भी तो भिन्नता नहीं थी। इसलिए हे बानर श्रेष्ठ, मुझे ये ज्ञान करने में मुश्किल हो गया कि तुम दोनों में सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। इसलिए मैंने बड़ा वेग वाला एक ऐसा बाण लिया था, मैंने वो बाण व्यर्थ नहीं जाता, वो बाण मैंने लिया था, लेकिन आगे जाकर मुझे शंका हो गई कि आप और हम दोनों परम मित्र हैं, अग्नि की साक्षी में मित्रता ली है। ऐसे समय में सुग्रीव यदि मैं अपने मूल का घात कर दूं, जिसके ऊपर मेरा कार्य टिका हुआ है, उसकी जड़ी उखाड़ के फेंक दूं, तुम्हारी और हमारी मित्रता एक परम धर्म है, उस धर्म का ही मैं नाश कर दूं, ऐसे कैसे हो सकता है? हे वानर श्रेष्ठ, ये मेरी बड़ी मूढ़ता होती, मेरा बड़ा बालकपन होता, ये मेरे द्वारा बड़ा पातक होता कि जिसको मैंने अभय दान दिया है वही मेरे बाण के द्वारा मारा जाए। अहम च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी। इस समय मैं तुम्हारे अधीन हूँ, लक्ष्मण तुम्हारे अधीन है, सीता तुम्हारे अधीन है, हम सब तुम्हारे अधीन है, और हमारे एकमात्र आश्रय हे बाली हे सुग्रीव तुम हो। इसलिए मैंने किसी प्रकार से बाण नहीं छोड़ा। देखो तुम कोई शंका मत करो, इसी मुहूर्त में अब तुम फिर दोबारा जाओ और जाकर के बाली को ललकारो। ये एक ही बाण बाड़ी बाली के लिए पर्याप्त है, तुम्हारे और बाली के बीच में कोई चिन्ह होना चाहिए। लक्ष्मण ये पास में गज पुष्पी के फूल लगे हुए इनके एक माला बनाओ और बानर राज सुग्रीव के गले में तुम अपने हाथ से डालो। उसी समय में लक्ष्मण जी महाराज गए और एक बड़ी सुंदर माला बनाए गज पुष्पिका की और ला करके लक्ष्मण जी ने उनके गले में डाला। राम जी ने कहा कि सुग्रीव हमने विजय की माला तुम्हारे गले में डाल दी है, अब तुम बाली के पास युद्ध करने के लिए जाओ। उसने कहा कि महाराज मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आया हूँ, अब आप जाने के लिए बोलते हैं, मेरे पास बल ही नहीं, इधर आओ। यूं राम जी ने उसके शरीर पर हाथ फेर दिया, पीठ पर हाथ फेर दिया, हाथ फेर दिया, एकदम सुग्रीव ऐसा हुआ जैसे कोई उसके हुआ ही नहीं हो, कुछ भी न हुआ हो। जब इस प्रकार से राम जी महाराज ने उसको वापस तैयार कर दिया, अब वो माला पहना हुआ किष्किंधा की ओर गया, किष्किंधा की तरफ चल रहा है। राम जी महाराज, लक्ष्मण जी, हनुमान, नल, नील, तार, ये चार बानर विशेषता से जो उसके साथ थे, ये सुग्रीव जी के साथ चल रहे हैं। राम जी महाराज बार बार अपने धनुष को और उसकी टंकार को संभाल रहे हैं, अपने शस्त्र हैं तूनीर में से निकाल करके और उनका देख करके रख रहे हैं, फिर दूसरा शस्त्र लेते हैं। ऐसे वो चलते भी जा रहे हैं, शस्त्रों को भी देखते चले जा रहे हैं, और सुग्रीव के मन में बड़ा जोश भी राम जी महाराज भरते जा रहे हैं। सुग्रीव कभी किसी प्रकार शत्रु से परास्त हो भी जाए तो इस प्रकार से हार सदा के लिए नहीं मानी जाती है, वो उस क्षण के लिए हार हुई है ऐसा मानना चाहिए। अब उस क्षण के हार को हम जीत में किस प्रकार से बदल सकते हैं, ये हर योद्धा को अपने मन में उत्साह रखना चाहिए। इस प्रकार से चलते चलते पुष्पों के और फलों के बाहर से झुके हुए वृक्षों को देखते हैं। वृक्षों को देख देख करके राम जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मण कैसे ये विचित्र वृक्ष है, ऐसे वृक्ष अपन ने पीछे नहीं देखे थे। ये देखो यहाँ पर कैसी कंदराएं हैं, पर्वत है, यहाँ के झरने हैं, यहाँ के शिखर भाग हैं, ये सब प्रिय दर्शना देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लक्ष्मण ये बड़े शांत शांत स्थल मालूम देते हैं। कहीं कहीं पर उन्होंने बड़े बड़े जलाशयों को देखा, जिन जलाशयों पर जल की पूरी व्यवस्था है, जहां पर निसरणी बनी हुई है, उन जलाशयों के अंदर कमल के फूल खिले हुए हैं। उनको देख करके आश्चर्य हुआ कि ये पक्षी किस प्रकार से शांत भाव से जलाशय में बैठे हुए हैं। राम जी महाराज इन सबको देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, और उसके बाद कई आने वाले निर्भय रहने वाले पशुओं को देखते हैं। पशुओं का समुदाय किस प्रकार से आ रहा, निर्भयान, उनको राम जी से भय नहीं, निर्भय होकर जा रहे हैं, चुपचाप धीरे धीरे झुंड के झुंड जा रहे हैं। हाथियों को देखा कि वे तालाबों के पास जाते हैं, सफेद सफेद दांत उनके चमक रहे हैं, और वे जिस समय में अपने सूंड से जल खींचते हैं तो दूर तक उनकी आवाज जाती है। अनेक जो है भयंकर आकृति वाले और भी पशु मिलते हैं। भगवान उन सबको देखते हुए आगे चले जा रहे हैं। कई बीच में बानर भी मिलते हैं, वे बानर सुग्रीव को देखते हैं परंतु सुग्रीव को कुछ भी नहीं कहते हैं। इस प्रकार से आकाश में रहने वाले पक्षी है, उन पक्षियों की ओर राम जी की दृष्टि है, परंतु वे पक्षी भी किसी प्रकार का कोई अपशकुन नहीं कर रहे हैं। बड़े वेग से चले चलते आगे उनको एक द्रुमखंड, एक बहुत बड़ा वृक्षों का समुदाय दिखाई दिया, जंगल दिखाई दिया। वो सप्त जन वन था, उसका नाम था सप्त जन वन, सात आदमियों का, सात भक्तों का वन। वो देख करके राम जी ने कहा कि सुग्रीव ये देखो, पास में सटे हुए ये वृक्ष आपस में कैसे सुंदर मालूम देते हैं, जैसे आकाश के अंदर बदल इकट्ठे हो गए हो, कई काले काले बदल आकर इकट्ठे होते हो, ऐसे वृक्ष खंड दिखाई देता है, चारों तरफ केले ही केला है, ये बड़ा विचित्र वन है। इस वन के विषय में आश्चर्य होता है, सुग्रीव जरा तुम बताओ तो इसके विषय में क्या परिचय है। ये बात यहाँ राम जी ने क्यों पूछी हो, ये इसलिए पूछी कि सुग्रीव के मन में भय है या धैर्य है। देखो जिसके मन में भय होगा वो और ढंग की बात बोलेगा, और धैर्य होगा वो उस विषय में और ढंग से ही बात करेगा। तो सुग्रीव जी महाराज ने राम जी की बात सुनकर के और बड़े धैर्य के साथ बताया, हे राघव ये एक बहुत विशाल जंगल है, विशाल आश्रम है, इस आश्रम के अंदर बहुत बड़ा बगीचा है और बड़े मीठे फल फूल लगते हैं। यहाँ पर सात ऋषि मुनि तपस्या करते थे और वे ऊंचा चरण करके और नीचा माथा करके लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की, और सात रात्रि के बाद वे एक बार भोजन करते थे, फिर वे सात दिन तक सात रात तक इसी प्रकार से तपस्या करते थे, इसलिए उनका नाम सप्तजन था और वे सात ही संख्या में थे। इनका प्रभाव बड़ा विचित्र कि वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की, तब इस आश्रम के यहाँ कोई न देवता आ सके, न असुर आ सके, न कोई पक्षी बाधा देते हैं, न कोई राक्षस यहाँ जा सकता है, उनकी तपस्या में कोई बाधा नहीं दे सकता, ऐसे उनकी तपस्या का प्रभाव था। उनके मन में किसी प्रकार से किसी से कोई भय नहीं था। वहाँ उन रहने वाले संतों को कभी भी भिक्षा के लिए या खाने के लिए कहीं पर भी कंदमूल लाने की जरूरत नहीं, यही उनको सब कुछ मिल जाता था। और यहाँ के पक्षी देखो कितना शांत गान कर रहे हैं। यहाँ पशु आपस में लड़ते नहीं है, वो लड़ने वाले पशु अपने आप ही इसमें नहीं जाते, उनकी वृत्ति पहले से ही शांत हो जाती है। अब इस समय में वो ऋषि नहीं है, लेकिन यहाँ कितनी शांति है, अभी भी उनकी तपस्या का प्रभाव ज्यों का त्यों रहता है। ये देखो वृक्षों के पास में ये जो कबूतर जैसा जैसा काला काला सा रंग दिखाई देता है, ये वास्तव में उनके किए हुए यज्ञ का धुआं है, यज्ञ की ज्वाला का धुआं है, जो मेघ के समान अब प्रतीत हो रहा है। इस स्थान को हे राम आप नमस्कार करो। कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाता है, इस स्थान को नमस्कार करके आगे बढ़ता है। लक्ष्मण से भी आप प्रणाम कराओ। जो यहाँ प्रणाम करते हैं उन लोगों का कोई भी पाप होता है वो नष्ट हो जाता है। न तेषाम अशुभं किंचित शरीरे मम विद्यते, शरीरे राम विद्यते, उनके शरीर में कभी आधी व्याधि बीमारी कुछ नहीं आती है। राम जी महाराज ने बड़े प्रसन्न होकर लक्ष्मण के साथ उस स्थान को प्रणाम किया और उन ऋषियों का भी अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद राम लक्ष्मण और सुग्रीव और शेष बानर बड़े प्रसन्न होते हुए आगे रवाना हुए। आगे रवाना होते उनको किष्किंधा नगरी स्पष्ट दिखाई दी। उसके बाद रामा ततस्तु रामा अनुज राम वानरा प्रगृह्य शस्त्राणि उदितोग्र तेजसः। राम जी महाराज ने अपना शस्त्र सुग्रीव के सामने दिखाते हुए अपने धनुष को उतार कर यूं उसको देखने लगे। सुग्रीव को विश्वास दिलाने लगे कि सुग्रीव पिछले बार जैसी बात होने वाली नहीं है, तुम्हारे मन में किसी प्रकार से खेद नहीं होना चाहिए। और फिर जो है पुरीम सुरेशात्मजवीर्य पालिताम बधाय शत्रु पुनरागतास्पी है। अब वे इंद्रपुत्र बाली के द्वारा रक्षित किष्किंधा नगरी पर जब वे आए तब जो है सब तैयार हो गए, सब अपना शस्त्र लेकर के तैयार हो गए। भगवान श्री राम गहन वन के अंदर अपने आप को वृक्षों के पीछे छिपा लेते हैं और साथ में जो उनके बंदर आए थे और लक्ष्मण जी भी थे, ये भी अपने को वहां छिपा लेते हैं, कोई उनको देख न सके। सुग्रीव को आगे भेजा गया जिसकी ग्रीवा बड़ी सुंदर, ग्रीवा माने गर्दन बहुत सुंदर, ऐसा वो सुग्रीव अब वो किष्किंधा के महल के सामने जाकर, बाली के महल के सामने जाकर जोर जोर से युद्ध के लिए आह्वान करने लगा। बाली मैं सुग्रीव तुमसे फिर युद्ध करने के लिए तुम्हारे यहां आकर तुमको ललकार रहा हूं। बाली उस समय अपने परिवार के बीच में बैठा हुआ था। बाली के पास में उसकी पत्नी तारा थी और उसकी और भी पत्नियां थी। बाली के पास में और भी उसके सेवक लोग थे। सब लोगों के बीच में सुग्रीव ने फिर कहा, बाली एक बार जीतने से कोई जीतना नहीं होता। जब तक व्यक्ति को कोई न कोई ललकारने वाला होता है तब तक उसकी संपूर्ण विजय नहीं मानी जाती। बाली अपने परिवार का मोह छोड़कर तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार का भी हूँ और तुमको ललकार भी रहा हूँ। परिवार और ललकार दोनों का संगम मेरे पास है। परिवार में तो केवल परिवार मिलेगा, शत्रु भी तो हूँ, मैं तुमको ललकार रहा हूँ, आओ मुझसे युद्ध करो। हरिवागुरिया व्याप्ताम तब तक आंचन तोरणाम, हम तुम्हारे द्वारा रक्षित इस किष्किंधा में फिर आए हैं और इस किष्किंधा नगरी के अंदर आकर हमने विचार किया है कि अब हम निश्चित रूप से तुमसे युद्ध करके तुम्हारा विनाश करेंगे। राम जी महाराज ने, राम जी की और सुग्रीव की, इन दोनों की पहले भी बात हो गई थी। सुग्रीव ने कहा कि देखो राम, कहीं ऐसा न हो कि मैं इस प्रकार से ललकारूं, उसको उत्साहित करूं और कथनचित यदि आप अभी भी मुझे बता दो कि बाली के अंदर यदि आपने विशेष शक्ति देखी है तो मैं वापस भी जा सकता हूँ, ये बात पहले की है, इतने ललकारने से पहले की। वाल्मीकि रामायण में कभी कभी ऐसा है, थोड़ा प्रसंग आगे का कह दे फिर पीछे का प्रसंग भी बोल देते हैं। राम जी महाराज ने कहा कि देखो सुग्रीव, ये भय और अविश्वास की जगह नहीं है, पौरुष दिखाने की जगह है। अविश्वास मत करो, विश्वास करो, कायरता मत लाओ, पौरुष लाओ अपने में। मैंने जब तुम्हारे गले में गज पुष्पिका लक्ष्मण के द्वारा डलवा दी है, तुम बहुत अच्छे लगते हो। ऐसा लगता है कि यदि कभी दिन में तारे उगते हो तो जैसे सूर्य के सामने, सूर्य के पास में अनेक तारे होते हो, पर होता नहीं दिन में ऐसा, ये तो रात में ही होता है। लेकिन सूर्य की उपमा क्यों दी कि तेज सूर्य का बढ़ता है ज्यादा, सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा में आता है, सूर्य का प्रकाश ही नक्षत्रों में जाता है, जो प्रकाश करने की जहां जहां ताकत है वो सूर्य से आती है, और सूर्य के प्रकाशित होने पर दूसरा कोई प्रकाशित होता नहीं। तो कहते हैं विपरीत इव आकाश है, यदि आकाश में विपरीत दशा हो तो देखो सूर्य के चारों ओर जैसे नक्षत्र होते हो ऐसे तुम्हारी इस गज पुष्पिका से शोभा हो रही है। देखो सुग्रीव, आज बाली के ऊपर आया हुआ क्रोध तुमको जो है देखना होगा कि मैं किस प्रकार से अपना क्रोध छोड़ता हूं, तुम्हें अपना भय छोड़ना होगा। एक बाण के अलावा दूसरा बाण उसके लगने वाला नहीं है। सुग्रीव तुम निश्चिंत रहो, तुम कहो तो मैं बाण को पहले भी बता दूं कि मेरा ये बाण उसकी छाती में जाएगा। आज तुम्हारे सामने बाली तड़पता हुआ यहां मिट्टी के अंदर लोटपोट होकर के मरेगा। एक बार केवल वो मेरे सामने आ जाना चाहिए और ये काम तुम्हारा है। मैंने 7 साल के वृक्षों को विदीर्ण किया था तो क्या एक बाली की छाती में ये बाण नहीं जा सकता? तुम मुझे कहां जो है कायर समझते हो? तुम मेरे में दोष मत देखो। यदि मैं आज बाली को न मारूं तब तुम जितना मुझे दोष देना दे देना, जितनी मेरी निंदा करनी है, जितना उपालम्ब देना है दे देना, उन सब को मैं बड़े प्रेम से तुमसे सुनूंगा। और देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यदि मैं आज ऐसा काम न कर सकूं तो तुम मुझ पर विश्वास मत करना और मैं मेरी सीता को खोजने के लिए अपना और कोई उपाय करूंगा। मैं अपनी सीता की प्राप्ति भी तो तुझसे ही चाहता हूं, मैं तुमको झूठ कैसे कह सकता हूं। अतएव आज मेरे तुम बल को और प्रत्यक्ष देखना। आज से पहले मैं कभी झूठ बोला नहीं हूं, आगे मेरा झूठ बोलने का विचार नहीं है। कितने भी चाहे मुझे कठिनाई का सामना करना पड़े लेकिन मैं अपने धर्म का लोप नहीं होने देता। तुमको मालूम है कि मैंने तुम्हारे सामने बाली के मारने की प्रतिज्ञा की है, तुमको मालूम है कि मैंने अग्नि की साक्षी में तुम्हारे साथ में मित्रता का धर्म स्वीकार किया है। अरे मैं पिता का धर्म निभाने के लिए वन में आया हूँ, स्त्री के प्रति अपना धर्म निभाने के लिए मैं दर दर ठोकरे खाते फिर रहा हूँ, एक मित्र के धर्म के पालन के लिए क्या मैं पीछे रहूंगा? मैं अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाला हूँ बाली न सुग्रीव, आज बाली को मेरे द्वारा मरा हुआ मानना। अब तुम कोई मन में भय मत लाना, तुम्हारे मन में यदि शंका और भय हो और फिर तुम शत्रु को ललकारो, ये तुम्हारे मन में बात नहीं रहनी चाहिए। प्रसूतम कलम क्षेत्रम वर्षेणेव शतक्रदुः तदाह्वान निमित्तं च बालिनो हेम मालिनः। उसने भी एक सोने की माला पहन रखी होगी ना, तो सोने की माला पहनने वाले उस बाली को तुम केवल आह्वान देना है। आह्वान जैसे आदमी खेती करता है, खेती करने के बाद उसमें बरसात होकर खेती करने का काम इंद्र का होता है, उसी प्रकार से तुम्हारा काम केवल आह्वान करने का है और उसके बाद फिर उस आह्वान को किस प्रकार से हम निभाते ये बात तुम्हारे सोचने की नहीं है। सुग्रीव जल्दी जाओ और ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, इतना उसको जोर से ललकारते हुए बोलो और ऐसा तीखा बोलो कि वो सब काम छोड़ करके तुरंत वो महल से बाहर आए, तुम्हारी गुफा से बाहर आए और बाहर आकर के तुमसे युद्ध करे। कारण कि वो पहले तुमको जीत चुका है, अतएव तुम उससे पराजित हुए हो, तुम्हारे शब्द वो सुन नहीं सकता है। तुमको उसने जीता है, जीता हुआ आदमी हारे हुए आदमी के कठोर शब्दों को सुनने में असमर्थ होता है। अतएव जल्दी जाओ और देखना, निष्पतिष्यत्य संगेन बाली से सप्रिय संयुगे है। आज बाली के साथ तुम्हारा ये अंतिम युद्ध है और बाली का भी आज ये अपने जीवन में अंतिम युद्ध है। जानन्तस्तु स्वकम, तुम देखो एक बात है, इस प्रकार की बात कहना उनसे कि स्त्रियों के समक्ष तुम उसका पौरुष जो है पौरुष के ऊपर लांछन लगाओगे, तो किस बात का आदमी, तेरे में क्या ताकत है? ये बात यदि स्त्रियों के साथ में बैठा हुआ वो सुनेगा तो वो क्रोध से पागल हो उठेगा और वो आ ही जाएगा। देखो सुग्रीव, मन में किसी प्रकार से आज भय लाने की जरूरत नहीं है। राम जी के वचनों को सुनकर के सुग्रीव बहुत जोर जोर से वहां पर नाद करने लगा। उसके नाद को सुनकर के जो वहां बड़े बड़े गोधे थे वो गोधे भग गए, उनके नाद को सुनकर के हाथी थे वो हाथी इधर उधर भग गए। राज दोष परामृष्टा कुल स्त्री इवा कुलाहा द्रवंती च मृगा शीघ्रम, सब हिरण इधर उधर भग गए। घोड़े थे वो हिन नाते हुए जंगलों में भग गए। जिस प्रकार से राजा का दोष देखने पर कुलांगनाएं सोचती है कि अब हमको दूसरा कौन बचाने वाला है, जब राजा के अंदर ही दोष आ गया तो वो अपनी लाज छिपाने के लिए जैसे भगती है बड़े वेग से, इस प्रकार से वे पशु सब इधर उधर भगने लग गए। आकाश के अंदर पक्षी थे वे पक्षी इधर उधर भगने लग गए सुग्रीव की गर्जना सुन करके। और उसके बाद जो है ततस्य जेमूत कृत प्रणाद नादम यमुंच त्वरया प्रतीत है, वो बहुत जल्दी ही इस प्रकार से जब गंभीर नाद करने लगा तो सबके मन में एक अपूर्व भय छा गया। सुग्रीव के नाद को सुनकर के अब बाली वास्तव में कैसे सह सकता था? ऐसा नाद उसने पहले नहीं सुना था, अभी पहले भी तो आया था नहीं सुना था। असल में आज बाली भी सुग्रीव की एक गर्जना सुनकर के भीतर में कितना ही बल होते हुए भीतर में कुछ कहीं कहीं उसके मन में भय की रेखा जग गई और वो बाली जो है वो इस नाद को सुनकर के बड़ा क्रुद्ध हुआ और क्रुद्ध होकर के वह इधर उधर देखने लगा। उस समय में बाली ऐसा लगा कि जैसे राहु के द्वारा ग्रसा हुआ सूर्य होता है, वो देखते देखते उसकी शोभा खत्म हो गई। बाली का दांत बड़ा कठोर था, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय में ऐसा लगा कि जैसे कोई मृणाल के साथ में कमल का फूल ये उदित हुआ हुआ कोई तालाब दिखता हो, ऐसा वो दिखाई दिया। भयंकर शब्द को सुना, शब्द को सुनते ही वो खड़ा हुआ। खड़ा होकर उसने जोर से वहां पर पैर की लात जमीन पर रखी। जमीन पर रखते ही उसी समय में तारा अपने स्थान से खड़ी हुई। खड़ी होकर उसने अपने पति के प्रति अपना स्नेह था, उस स्नेह के कारण बड़े आदर से तारा ने बाली से हित भरे शब्द कहे कि हे आर्य पुत्र, इस संसार में आपके समान कोई श्रेष्ठ वीर पुरुष नहीं है, परंतु वीर की शोभा धैर्य धारण करने में है। वीर सबसे पहले वीरता अपने में लाता है, अपने अंदर के जो शत्रु हैं उन शत्रुओं को जीतने में वीर पुरुष वीर कहलाता है। हे प्रीतम, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। जिस प्रकार से नदी के प्रवाह के तेज बढ़ने पर उसका किनारा नष्ट होकर नदी का ही नुकसान करने वाला होता है, उसी प्रकार से अपने अंदर उठा हुआ क्रोध सबसे पहले ही अपना ही नुकसान करने वाला होता है। मनुष्य रात में सोकर के अपने कपड़ों को दूसरे दिन जिस प्रकार से उतार के फेंक देता है, अथवा जो अपनी माला रात को फूलों की पहनी हुई है सो गया उसके बाद दूसरे दिन उस माला को फेंक देता है, उसी प्रकार से आप अपने मन से इस क्रोध को उतार करके फेंक दीजिए। ये क्रोध आपका बासी हो गया, आज तक का क्रोध आपका सार्थक था, अब ये आज क्रोध आपका बासी हो गया है। हे वीर, आप यदि बहुत से शत्रु आपके सामने आ जाए वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन ये आपका क्रोध रूप शत्रु है, ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। सहसा तव निष्क्राम है, अकस्मात आप ये जाने की सोच रहे हैं, मेरा हृदय शंकित होता है। मैं आपसे बड़ी नम्रता से प्रार्थना करती हूं, आप मेरी बात को सुनिए, मैं आपको क्यों मना करती हूं, आप में कोई शक्तिहीनता देखकर मना नहीं करती हूं या कोई और कारण नहीं है? पिछली बार तो मैंने आपको मना नहीं किया था, अतएव अब की बार जो मना कर रही हूं उसमें एक कारण है। अभी अभी आपने सुग्रीव को मार करके और उसको ऋषिमुख पर्वत की तरफ खदेड़ दिया था, और वही सुग्रीव थोड़ी देर में दोबारा आपको भरी आवाज में बड़े जोश के साथ बड़ी निर्भयता के साथ यहाँ हम सबके बीच में जोर जोर से ललकार रहा है, हे आर्य पुत्र आप इसकी गहराई में सोचो कि इसमें क्या बात है। इसमें एक बड़ी भारी हमको शंका पैदा होती है कि सुग्रीव के अंदर इतना अभिमान कहां से आया है? थोड़ी देर में सुग्रीव ने कौन सा तप किया कि इतनी बड़ी शक्ति ले ली और उसी दिन आपको ललकार दिया? आज तक इतिहास का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जिस दिन शत्रु को खदेड़ा उसी दिन शत्रु ने आकर उसको वैसे उससे ज्यादा उत्साह से आकर ललकारा हो। नहीं तद अल्पम ही कारणम, ये कोई छोटा मोटा कारण नहीं है, आप इसके विषय में गंभीरता से सोचिए। मैं आपको असहाय नहीं मानती, परंतु सुग्रीव को भी आज मैं असहाय नहीं मानती हूं। सुग्रीव अकेला नहीं आया है, सुग्रीव के साथ कोई न कोई सहायता करने वाला और होना चाहिए। उसी के बल के ऊपर ये सुग्रीव दोबारा नाच रहा है, बिना सहायता के ऐसा नहीं कर सकता था। सुग्रीव भी बड़ा बुद्धिमान है महाराज, सुग्रीव भी स्वभाव से बड़ा अच्छा है, सुग्रीव ने भी किसी के साथ मित्रता की होगी तो उसकी उसके बल की पूरी परीक्षा होगी, परीक्षा की होगी। बिना परीक्षा किए हुए सुग्रीव अपने पास में किसी को पटकने न दे, फटकने न दे। मैंने पहले सुना है, अंगद ने एक बार मुझसे कहा था कि हे मां, तात को कौन कहे, मैं आप ही को कह देता हूं कि एक बार मैं वन में गया था, वहां पर मुझे एक बानर मिला, उस बानर को मैंने सुग्रीव के पीछे गुप्तचर के रूप में भेजा था। उस बानर ने मुझे बताया कि अयोध्या के कोई राजा दशरथ हुए हैं, उनके कोई दो बेटा हैं, एक का नाम राम और एक का नाम लक्ष्मण, ये कोई इक्ष्वाकु के वंश में पैदा हुए होंगे, तो ये दोनों सुग्रीव के साथ में मित्रता किए हैं, और उस मित्रता में दोनों ने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारे दुख में मैं सहायता करूंगा, तुम्हारे दुख में मैं सहायता करूंगा। उस समय में वो गुप्तचर कह रहा था कि मैंने राम की ओर देखा, राम बड़े उत्साही, बड़े बुद्धिमान, बड़े धीर, बड़े गंभीर, लेकिन पर बला मर्दी, शत्रु सेना का नाश करने में पूर्ण बल रखने वाले हैं, और ऐसा लगता है जैसे प्रलय काल की आग पैदा हो गई हो। वो निवास वृक्ष साधु नाम सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले हैं, विपदग्रस्तों को शरण देने वाले हैं, पीड़ित लोगों के एकमात्र आधार है, इस संसार में यश के एकमात्र पात्र है। उस बंदर ने बताया अंगद को कि वे जिस प्रकार का इशारा करते थे वो इशारा भी कभी उनका व्यर्थ नहीं होता था, ऐसे ज्ञान से विज्ञान से भी संपन्न है राम। वे अपने पिता के कहने से वन में आए हैं और यहां वन में आकर अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार से हिमालय के अंदर सब धातुएं मिलती हैं, उसी प्रकार से राम के अंदर सारे गुण मौजूद हैं। ऐसी बात उस बंसर ने अंगद को कही, अंगद ने मुझे कही है। और सुग्रीव का यदि उस राम के साथ में मित्रता है तो हे महाराज, आप राम को कभी नहीं जीत सकते। मैं आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करती हूं, राम के साथ आप बैर विरोध मत लीजिए। राम महात्मा है, राम अजय है, राम अप्रमेय है। रणभूमि के अंदर उनको जीतना बड़ा मुश्किल है। शूर वक्षामि ते किंचित्।